ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. आपने अपने पूर्व के सत्रों में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के विषय में समझा है. कुछ दिन प्रतिदिन की समस्याओं से संबंधित विषय भी आपके लिए गए हैं और ये जो सत्र हैं वो भी हमारे दिन प्रतिदिन की समस्याओं से ही संबंधित हैं. अगर हम तनाव की बात करें तो आज कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे तनाव नहीं होता है. कह सकता है कोई? हाँ, भी वर्तमान में आप कह सकते हैं कि हम ज्ञान सरोवर में बैठे हैं तो तनाव मुक्त है, लेकिन यहां से वापस जाएंगे तो फिर से वही समस्याएं, वही दिनचर्या, तो तनाव होने लगेगा. आज स्थिति ये है, तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न होने पर. हम सोचते हैं क्या हम कुछ कर नहीं रहे हैं, टेंशन क्यों नहीं हो रहा है. आज बच्चे भी तनाव का अनुभव करते हैं. जो उम्र खेलने और खाने की उम्र मानी जाती थी, मौज करने की उम्र मानी जाती थी, उसमें भी तनाव प्रवेश हो चुका है. हमारे यहाँ अनेक विंग हैं और उसमें एक मेडिकल विंग है जो लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए स्वास्थ्य मेले या स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं. तो ऐसे ही एक शहर में मेला लगा था, उसमें कई स्टॉल थे एजुकेशन के, और एक स्टॉल था जिसमें ये कहा गया कि आप यहाँ अपनी बुराई का दान करें. बुराई का दान करना माना अगर कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है या तंबाकू खाता है तो वो अपना उसका वहां दान कर दे तो उसकी वो बुराई छूट जाएगी. तो एक माता पिता अपने बेटे के साथ वो मेला देख रहे थे और जब वो स्टॉल पर पहुंचे तो उनको बहुत अच्छा लगा. तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम चॉकलेट बहुत खाते हो, तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं चॉकलेट नहीं खाओ, तुम अपने यहां चॉकलेट दान कर दो. तो बेटे ने कहा कि माँ मुझे सोचने दो मुझे क्या दान करना है. और फिर एक मिनट सोच के बोलता है मैं अपनी पढ़ाई दान कर दूं, मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होती है. तो बच्चों को आज एडमिशन से लेकर के कैरियर के हर मोड़ पर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है. और कई बार ये देखने में आता है कि जब बच्चों के एग्जाम्स चलते हैं तो माँ बाप इतने टेंशन में होते हैं कि ऐसा लगता है कि बच्चों के नहीं माँ बाप के एग्जाम्स चल रहे हैं. ये भी स्थिति है आज कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी उतना ही टेंशन में रहते हैं. तो कहा गया कि जो 17वीं सदी थी वो विश्वास की सदी थी, 18वीं सदी एज ऑफ रीजनिंग ज्ञान की सदी थी, 19वीं सदी आविष्कारों की सदी थी. विज्ञान ने इतने नए नए आविष्कार किए कि 20वीं सदी आते आते मनुष्य को बहुत सुख के साधन मिले. तो 20वीं सदी तो सुख की सदी होनी चाहिए थी, लेकिन उसे कहा गया एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. और वर्तमान में हम 21वीं सदी में हैं. अगर यही हमारी जीवन शैली रही तो 21वीं सदी कौन सी सदी हो जाएगी? कौन सी सदी हो जाएगी? एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन. आज डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन डिप्रेशन में हैं. 1 करोड़ लोग भारत में डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, पूरे विश्व में तो कितने करोड़ खाते होंगे. तो डिप्रेशन भी एक एपिडेमिक का रूप लेता जा रहा है. लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं तो फिर ये सदी शांति की सदी भी हो सकती है, सुख की सदी भी हो सकती है. तो हम कौन सी सदी में जीना चाहेंगे? कौन सी सदी में जीना चाहेंगे? शांति की सदी में. तो फिर हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा. डॉक्टर हेंसले ने इस क्षेत्र में काफी अध्ययन किया और उन्होंने तनाव को परिभाषित किया कि तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है. यानी परिस्थितियों की मांग ज्यादा है उसकी तुलना में अगर हमारी सामर्थ्य कम है तो हम जो महसूस करते हैं, जो दर्द हमें फील होता है वो तनाव है. स्ट्रेस इज ए फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी दिस समथिंग आई नीड टू चेंज. और वो परिवर्तन लाने के लिए हमें कुछ नया सीखना होगा. आज प्रेशर्स चारों तरफ से आते हैं. पास्ट में कुछ घटनाएं घट चुकी होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं. बात जब हुई होती है तब वो बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम उसे सोच सोच कर बड़ा रूप देते हैं. यानी राई को हम पहाड़ बनाते हैं और उसका तनाव हम वर्तमान में भी अनुभव करते हैं. ये बहुत हल्की चीज है, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया तो मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसी को अगर मैंने 10 घंटे पकड़ लिया तो क्या होगा, मेरा हाथ दर्द करने लगेगा और हो सकता है और लंबा समय मैं पकड़ूं तो मेरा हाथ शून्य भी हो जाए. तो कितना लंबा समय मैंने पकड़ा है उस पर निर्भर करता है. मन में भी कोई बात मैंने पकड़ी है, कितना लंबा समय उसको मैंने पकड़ कर रखा है, उसका असर, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है. ऐसे ही भविष्य की चिंताएं होती हैं, क्या होगा, कैसे होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा. लोगों को अपनी कैरियर की, नौकरी की चिंता, बच्चों की चिंता, उनके भविष्य की चिंता, बच्चों की शादी की चिंता, फिर रिटायरमेंट के बाद की चिंता, कोई ना कोई प्रकार की चिंता, बीमारी की चिंता पाले ही रहते हैं. तो भविष्य के भी प्रेशर्स वर्तमान में वो फील करते हैं और वर्तमान की अपनी समस्याएं होती हैं. तो उन्होंने ये बताया कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं और वो केमिकल्स हानिकारक हैं, जिन्हें हम एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कहते हैं. ये स्टिमुलेंट हैं, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को वो स्टिमुलेट करते हैं. और अगर लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहता है तो साइकोसोमैटिक डिजीजेस होने लगते हैं. आज 70% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं. येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है जिसमें विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्ययन किया गया. उनकी 20 वर्ष की आयु, उसमें उनको उनके व्यक्तित्व के अनुसार दो ग्रुप में बांटा गया. पहले ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया गया जो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते थे, गुस्से में आ जाते थे, जो धैर्य नहीं रख सकते थे, जो मन को शांत नहीं रख सकते थे. और दूसरे ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया गया जो इसके विपरीत स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, धैर्य रख सकते थे, अपने मन को एकाग्र कर सकते थे. और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तो देखा दोनों ग्रुप का स्वास्थ्य उस आयु में सामान्य था, दोनों ही स्वस्थ थे. लेकिन क्योंकि एक अध्ययन था तो हर 10 साल में उन्हें हेल्थ चेकअप के लिए बुलाया जाता था. तो ये देखा गया कि 50 साल की उम्र तक आते आते जो पहला ग्रुप था, यानी जो जल्दी टेंशन में आते थे, उनमें दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना अधिक बीमारियां हो चुकी थी. किसी को हार्ट की बीमारी थी, किसी को ब्लड प्रेशर की थी, किसी को डायबिटीज थी, और भी जो अन्य साइकोसोमैटिक डिजीजेज हैं, कोई ना कोई डिजीजेज उनको हो चुके थे. और इसीलिए उनके मृत्यु की संभावना भी 5 गुना ज्यादा थी. और यही कारण है कि हमें अपने तनाव को कम करना चाहिए या अपने को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव होता है. आप देख रहे हैं यहाँ पर तनाव की स्थिति में हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है. अगर कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं, आजकल 40 की उम्र के बाद ही धमनियों में ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं और एड्रेनलिन के कारण धमनियां सिकुड़ जाती हैं, तो हम अगर टेंशन में आते हैं हार्ट अटैक हो सकता है, वो भी संभावना बनती है. ये देखा गया हृदय रोगों का एक बड़ा कारण तनाव है. अन्य कारणों से भी हृदय रोग होते हैं लेकिन मेजर फैक्टर इज स्ट्रेस. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका असर होता है, उसमें एसिड ज्यादा बनता है, तो अल्सर्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया हो सकता है, नर्वस सिस्टम पर असर आता है, उसकी वजह से हेडेक होना, नींद नहीं आना, सिर में दर्द होना, थकान बने रहना, डिप्रेशन, मानसिक क्षमता प्रभावित होती है, तो हम एकाग्र नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते, स्मरण शक्ति कम होने लगती है, निर्णय शक्ति कम होने लगती है, फिर साइकोटिक डिजीजेस होने लगते हैं, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमैटिक डिजीज हैं। लोग क्या करते हैं अपने तनाव को कम करने के लिए, कई बार व्यसनों का सहारा लेते हैं, शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे या गुटखा खाएंगे, लेकिन उससे हमारे स्वास्थ्य पर और बुरा असर होता है। तनाव के कारण हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके कारण इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हम सभी अपने जीवन में तनाव का अनुभव करते हैं, सभी अनुभवी हैं, अभी पूछा हमने आपसे, तो हम आपसे पहले शेयर करेंगे कि कौन से ऐसे कारण बनते हैं जब आप तनाव महसूस करते हैं। What are the stresses in your life? चाहे वो फैमिली लाइफ में है, चाहे वो वर्क प्लेस की लाइफ में है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, कोई भी शेयर कर सकते हैं। बताइए जी। घरेलू झगड़े, संबंधों में मतभेद, विचार नहीं मिलते हैं तो फिर छोटी छोटी बात में हम एक दूसरे से टकराते हैं, फिर ये फैमिली लाइफ की बात हो गई, और कहेंगे अभी तो हम ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, बिल्कुल तनाव मुक्त हैं। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। बिजनेस प्रॉब्लम, उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिजनेस अप्स एंड डाउन होता है, लॉस हो सकता है, जरूर उसमें तनाव होता है, और प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाता है, ये भी आज प्रॉब्लम है, धन को बहुत महत्व देते हैं, और हाँ जी बच्चों का बिहेवियर, जनरेशन गैप, इट्स अ बिग प्रॉब्लम आज के समय में, और ईगो, यस, हाँ, चाइल्ड एजुकेशन, एजुकेशन इतनी महंगी है, उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो ऐसे कई कारण हैं। इसके ऊपर भी स्टडी की गई, होम्स एंड राहे अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि जो भी घटना हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है वो तनाव पैदा कर सकती है। डेथ इन द फैमिली, परिवार में किसी निकट संबंधी की मृत्यु, और यदि वो असमय मृत्यु है, दुर्घटना में मृत्यु है, तो बहुत तनाव पैदा करती है। डाइवोर्स एंड सेपरेशन, पति पत्नी में जैसे कहा मतभेद होता है, अहम का टकराव होता है, दोनों साथ नहीं रह सकते, अलग रहने लगते हैं, और फिर स्थिति अगर तलाक तक पहुंचती है तो दो परिवार बहुत तनाव से गुजरते हैं। विदेशों में तो ये आम है, भारत में भी आज तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा भी वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है। मैरिज खुशी का मौका है, लेकिन इसमें भी टेंशन हो सकती है। एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदा, और उन्होंने अपनी पत्नी का नंबर दिया, भाग्य से उनकी लॉटरी खुली और वो मैसेज उनकी पत्नी को मिला, क्योंकि नंबर उसका दिया था। तो पत्नी ने सोचा कि मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, मुझे सीधा नहीं बताना चाहिए, मुझे अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। तो उसने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की, तो उसने कहा कि आप उनको मेरे पास भेज दो, मैं बता दूंगा। फैमिली डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने थोड़ा न्यूज की बात की, थोड़ा हेल्थ की बात की, और फिर कहा अगर आपको 10 लाख की लॉटरी निकल जाए तो आप क्या करोगे। कहा डॉक्टर अगर 10 लाख मिलेंगे तो मैं गाड़ी ले लूंगा, मुझे गाड़ी की जरूरत है। फिर कहा अगर आपको 50 लाख की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे, कहा अगर 50 लाख मिलेंगे तो फिर मैं एक घर ले लूंगा, मुझे घर भी चाहिए। फिर डॉक्टर ने कहा आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आप क्या करोगे? तो उसने कहा डॉक्टर क्यों मजाक करते हैं, जरूर मैंने टिकट लिया है लेकिन मैं इतना भाग्यवान नहीं हूं कि मेरी लॉटरी ही लग जाए। तो उसने कहा सचमुच लग गई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा डॉक्टर अगर ये सच है तो फिर 50 लाख पहले मैं आपको दे दूंगा। वो डॉक्टर को अटैक हो गया। तो यहां भी ऐसा होता है कि जो माता पिता जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है, उन्हें बहुत प्रबंध करने होते हैं, उसमें धन की समस्या, ससुराल पक्ष वालों के व्यवहार की समस्या, कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जिनकी शादी होती है उनके लिए नए लोग, नया वातावरण, उनके साथ एडजस्ट करना, खुशी के साथ साथ टेंशन भी होता है। मनी प्रॉब्लम अभी आपने भी शेयर किया, धन की समस्या है, क्योंकि आज विज्ञान ने इतने साधन दिए हैं, हम सब चाहते हैं हमारे पास वो सब कुछ हो, सब सुविधाएं हो, उसके लिए धन चाहिए। अगर है तो ठीक, नहीं तो गलत तरीके से भी हम धन कमाने की कोशिश करते हैं। आज की जिंदगी भाग दौड़ की जिंदगी है। क्यों भाग दौड़ की जिंदगी है? किसके पीछे भाग रहे हैं? कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन हम कमा लें। आज धन सब कुछ है, धन शक्ति है, धन से इंसान की प्रतिष्ठा है। ये वो समय है आज का जो समय है। पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज स्थिति क्या है? उल्टी है। धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। लोग धन कमाने के लिए अपने चरित्र की परवाह नहीं करते, अपने संबंधों की परवाह नहीं करते, मूल्यों की परवाह नहीं करते। अभी बात की प्रॉपर्टी का झगड़ा, धन के सामने भाई भाई भी दुश्मन हो जाते हैं। अगर बंटवारे में थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, बेटे बाप के दुश्मन हो जाते हैं, ऐसे कितने समाचार होते हैं आज के समय में। तो धन हमारे जीवन की आवश्यकता है जरूर, लेकिन सब कुछ नहीं है। आप धन से किताबें खरीद के ले आएंगे, ज्ञान खरीद लेंगे, आप धन से घड़ी खरीद के ले आएंगे, समय खरीद लेंगे, दवाइयां खरीद के ले आएंगे, स्वास्थ्य खरीद लेंगे, नहीं खरीद सकते ना। तो धन हमें जरूर कमाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में सुख शांति लाता है, और नहीं तो वो धन भी, अधिक धन जो गलत तरीके से कमाया गया है, वो भी टेंशन पैदा करता है। देखो उसको बचाना पड़ता है, गवर्नमेंट से बचाओ, उसको चोरों से बचाओ, उसकी टेंशन होती है, नहीं होती है? धन दोनों तरह से तनाव पैदा करता है, गरीबी भी तनाव और ज्यादा धन भी तनाव। ऐसे ही बच्चों की बात जो आपने कही, आज हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऊंचे से ऊंचा कैरियर बनाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या ऐसा ही कुछ ऊंचा अपना स्थान बनाए समाज में। अगर बच्चे योग्य हैं तो जरूर आपकी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, पर अगर उसमें वो योग्यता ही नहीं है, क्योंकि हर एक अलग है, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, या उसकी रुचि ही नहीं है, दो बातें हैं, एक तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही कहीं और है, आप चाहते कुछ और है, बच्चा कुछ और चाहता है, और या फिर उसमें वो योग्यता नहीं है जो आप उसे बनाना चाहते हैं, तो बच्चों पर दबाव आता है कई बार, उसकी वजह से बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। यहाँ कोटा शहर है राजस्थान में, जो कोचिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और जब भी एग्जाम के रिजल्ट आते हैं हर साल कोई ना कोई बच्चे वहां सुसाइड करते हैं। एक बच्चे ने सुसाइड किया, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे पिता चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं तो अभी एग्जाम में फेल हो गया हूं, और मुझे पता है मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपने माँ बाप को भी निराश नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं। तो बच्चे कई बार इतने परिपक्व नहीं होते हैं, आपकी भावनाओं को शायद वो उस तरह से नहीं समझ पाते, तो हमें ही बच्चे की योग्यता को समझकर उस अनुसार उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। बच्चों पर अधिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात, यदि हम चाहते हैं बच्चे हमारा कहना माने, कई बार हम देखते हैं बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, गलत संग में पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, आजकल मोबाइल सबके हाथ में होता है, तो फिर बचपन से ही उनको अच्छे संस्कार दें। अगर आपने बचपन से ही उनको अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत छूट नहीं दी है, तो फिर जैसा आप चाहते हैं वैसे ही बच्चे चलेंगे। कार्य क्षेत्र पर हम काफी समय व्यतीत करते हैं, 8-10 घंटे हमारे कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वहां भी कोई ना कोई समस्याएं होती हैं। बीइंग फायर्ड, हमारे अधिकारी कोई ना कोई तो होते ही हैं, और यदि वो कठोर स्वभाव के हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, सारा दिन उसकी प्रशंसा नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई तो 4 लोगों के सामने अपमानित कर दिया जाता है। ऐसे बॉस तनाव पैदा करते हैं, तो किसी किसी के ऐसे अधिकारी भी होते हैं, कंपीटिंग विद ए कलीग, साथियों के साथ कंपटीशन थोड़ा बहुत तो रहता ही है, क्योंकि जमाना ही कंपटीशन का है। हेल्दी कंपटीशन है तो प्रोग्रेस होती है, लेकिन अगर अनहेल्दी कंपटीशन है, ईर्ष्या द्वेष पर आधारित है, तो वो कंपटीशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है, फिर ऐसा कंपटीशन छोड़ देना चाहिए। कन्फ्लिक्ट विद कलीग, साथियों के बीच में मतभेद, विचार नहीं मिलते, काम उन्हीं के साथ करना है, फिर उनका सहयोग हमें चाहिए तो सहयोग नहीं मिलेगा, ऐसा वातावरण भी तनाव पैदा करता है। कई बार डिमोशन हो जाता है, हम चाहते तो प्रमोशन है, लेकिन हमारा कोई पिछला रिकॉर्ड ऐसा होता है कि प्रमोशन की बजाय डिमोशन, माना पद कम कर दिया जाता है, कई बार तो इवन सस्पेंड भी कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए नौकरी से बिठा भी दिया जाता है, तो ये बहुत तनावपूर्ण होता है, क्योंकि लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कम्फर्ट्स। व्यक्ति की बदनामी होती है वो उसके लिए बहुत असहनीय होती है। एक्सेसिव वर्कलोड, बहुत काम, अपने को समय नहीं दे सकते, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। नॉइजी एनवायरमेंट, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है, पोल्यूशन होता है, मशीनों की आवाज, पर्याप्त स्टाफ नहीं है या स्किल्ड स्टाफ नहीं है, ऐसी कई बातें जॉब में चलती रहती हैं। और ये देखा गया कि 40% एम्प्लॉयज को स्ट्रेस होता है, एक स्टडी में देखा गया। और ये भी देखा गया कि जब उनके तनाव को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गए तो उनके कंपनसेशन क्लेम में 70% तक कमी आ गई, इतना अंतर आ गया। तो इसीलिए अगर हम स्ट्रेस मैनेज करने की कला सीखते हैं तो उससे हमारे जीवन में अंतर आता है। तनाव के बारे में कुछ भ्रामक धारणाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ तनाव तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए होगा ही, अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहते हैं तो कुछ तनाव तो जरूर होगा, सही है? जो समझते हैं सही है वो हाथ उठाएं, अच्छा, जो समझते हैं नहीं गलत है वो हाथ उठाएं, अच्छा बराबर है। तो आप देख रहे हैं यहां ग्राफ में, जब हम स्ट्रेस में काम करते हैं तो शुरू में हमारे शरीर में कैटेकोलामिन्स बनते हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने स्ट्रेस में काम किया तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ गई, लेकिन कुछ ही समय के बाद शरीर में स्टेरॉइड बनते हैं और ये हमें थकाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस कम होने लगती है, तो अल्टीमेटली हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है। मानो आप स्ट्रेस में काम करते हैं, आप सक्सेसफुल भी हो गए, 35-40 साल की उम्र तक आते आते आपको जो धन कमाना था आपने कमाया, जो पद पाना था वो पाया, जो नाम कमाना था वो भी कमाया, लेकिन अब आप हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई ना कोई बीमारी लग चुकी है, चाहे डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट की बीमारी है, ये सारी बीमारियां जो साइकोसोमैटिक डिजीजेस होते हैं वो क्योर नहीं होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं, दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं। तो आपने 35-40 साल कमा लिया, अब जितने भी साल जीने वाले हैं स्वस्थ रहने के लिए क्या करते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि जो हमारे ये केमिकल्स हैं वो ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि हम किस लिए तनाव में हैं, हम सफलता के लिए तनाव में हैं या कोई समस्या को लेकर के तनाव में हैं। पर यदि हम लगन, उमंग, उत्साह, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास से काम करते हैं तो भी हम सफल होते हैं और उसका हमारे स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। एक भ्रामक धारणा है कि दूसरों के कारण हमें तनाव होता है, परिस्थितियां हम में तनाव पैदा करती हैं। ये भी सच है या गलत है? 400 लोगों के ऊपर एक सर्वे किया गया, जैसे हमने आपसे पूछा आपके तनाव का कारण क्या है, तो हम सभी ने परिस्थितियों को जिम्मेवार बताया, किसी ने भी ये नहीं कहा मुझे मेरे कारण तनाव होता है ना? ऐसे ही 80% लोगों ने यही कहा। जैसे एक सास का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, उसको पूछा आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने कहा मेरी बहू के कारण, मैं जैसा चाहती हूं ये वैसा नहीं करती है, ये मेरा और ही सामना करती है जिसके कारण मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जब बहू को पूछा गया जिसको सिर दर्द रहता था, उसने क्या कहा होगा, मेरी सास के कारण ये हर काम में कमी निकालती है, गलती निकालती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मेरे को सिर दर्द होता है। जब वर्क प्लेस पर मैनेजमेंट को पूछा गया तो उन्होंने कहा वर्कर्स के कारण हमें तनाव होता है, क्योंकि वर्कर्स काम नहीं करना चाहते और उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं, अगर मांगे पूरी नहीं करो तो ये यूनियन बनाते हैं, हड़ताल करते हैं। हम देखते हैं आजकल बात बात पे हड़ताल होती है, हड़ताल करते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। फिर जब वर्कर्स से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट के कारण हमें तनाव होता है क्योंकि मैनेजमेंट काम तो बहुत लेती है लेकिन जो वेतन सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो सब नहीं मिलती हैं। जब माँ बाप को पूछा तो क्या कहा, जैसे आपने कहा बच्चों के कारण, और बच्चों से पूछेंगे तो माँ बाप के कारण। हर एक की उंगली किसकी ओर है, दूसरे की ओर है। अगर हम एक उंगली दूसरे की ओर कर रहे हैं तो तीन उंगली कहाँ हो रही है, मेरी ओर। अगर एक कमी सामने वाले में है तो पहले तीन कमी किसमें है, किसको पहले बदलना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं सही हूं, जो मैं सोच रही हूं, जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं वो सही है, दूसरे को बदल जाना चाहिए। सास हमेशा समझेगी बहू को मेरे अनुसार चलना चाहिए, बहू क्या समझेगी, मेरी सास को मुझे आज के जमाने को समझना चाहिए। ऐसे ही बच्चे माँ बाप से अपेक्षा करते हैं, माँ बाप बच्चों से, ऐसे ही होता है ना। तो हम हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन यहां स्पिरिचुअलिटी में हम सीखते हैं सेल्फ चेंज, स्व परिवर्तन। जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं तो ही हम दूसरों को परिवर्तन की प्रेरणा देते हैं। एक बार एक पति पत्नी ट्रांसफर होकर के दूसरे शहर में गए, तो एक अपार्टमेंट में उन्होंने फ्लैट लिया। कई फ्लैट आजकल आमने सामने बने हुए होते हैं, तो ऐसे ही फ्लैट में वो रह रहे थे और एक दिन वो अपनी बालकनी में सवेरे के समय बैठकर चाय पी रहे थे और सामने वाले फ्लैट की महिला कपड़े सुखा रही थी। तो ये बहन को कमेंट करने की आदत थी, तो जब उसने उसको कपड़े सुखाते हुए देखा, उसे लगा कपड़े साफ नहीं धुले हुए हैं, तो उसने अपने पति को कहा देखो इसने कपड़े कैसे धोए हैं, जैसे लगता है कपड़े धोने नहीं आते। तो पति ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, जब वो चाय पी रहे थे वो कपड़े सुखाने आई, आज भी उसे लगा कि कपड़े साफ नहीं धुले हुए हैं। उसने कहा लगता है इसके पास अच्छी क्वालिटी का सर्फ नहीं है। फिर तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, जब वो चाय पी रहे थे उसके कपड़े धोने का टाइम होता होगा, लेकिन आज देखा उसने कपड़े बहुत साफ धुले हुए हैं, लेकिन फिर भी कमेंट किया क्योंकि आदत थी, अरे आज तो इसने बड़े साफ कपड़े धोए हैं, लगता है इसने अपना सर्फ चेंज कर दिया है। तो पति ने कहा नहीं, मैंने बालकनी का शीशा साफ कर दिया है। अब कमी कहाँ थी और देख कहाँ रहे थे। तो जिंदगी भर हम भी यही करते रहते हैं, हम दूसरों की कमी, दूसरों की तरफ हम देखते रहते हैं, अपनी तरफ हम नहीं देख पाते हैं। फिर हम काम को कहते हैं कि बहुत कार्य करना पड़ता है इसीलिए हमें तनाव होता है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमें कंपनियां डेडलाइंस देती हैं, वो समय सीमा में बहुत कार्य करना पड़ता है। तो व्यक्ति को काम से तनाव नहीं होता है, लेकिन किस भावना से हम काम करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने काम को पसंद करते हैं, दिल से करते हैं, वो काम हमें खुशी देता है। लेकिन अगर जो काम मुझे पसंद नहीं है और मुझे करना पड़ता है या मुझसे कराया जाता है, तो वो काम हमें जल्दी तनाव पैदा करता है। तो मानो अगर हमें काम पसंद नहीं है और हमें करना पड़ रहा है और हम चेंज कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, जिसको लोग जॉब डिससैटिस्फैक्शन कहते हैं। पर मानो कई बार ये हमारे हाथ में नहीं होता, हम अपना जॉब चेंज नहीं कर सकते या अपना कार्य नहीं बदल सकते, देन लर्न टू लव योर वर्क। जो भी आप कर रहे हैं उसे आप दिल से करना सीख लें, तो आपको वो काम तनाव नहीं देगा। और अगर बहुत ओवरवर्क है, देन मैनेज इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है उन्हें पहले कीजिए, जो लेस इम्पॉर्टेंट है उन्हें बाद में, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं। आप किसी और का सहयोग भी ले सकते हैं अगर आप ओवरवर्क्ड हैं तो। कई बार हम सोचते हैं कि हमसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता, मुझे ही सब काम करना है। तो जहां हम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहते हैं तो ये फिर वर्क ओवरलोड समस्या आ जाती है। और जहां तक डेडलाइंस की बात है, तो कंपनियां क्यों डेडलाइंस देती हैं? क्योंकि उन्हें अपने प्रोजेक्ट में प्रॉफिट लेना होता है। अगर समय सीमा में काम पूरा नहीं हुआ तो लॉस हो सकता है उनको, उससे कर्मचारियों पर थोड़ा प्रेशर आता है। एक बार ऐसे एक बिजनेसमैन थे, उनको अपने लिए एक पार्टनर चाहिए था क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे जैसा पार्टनर चाहिए, उसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया कि मेरे बंगले के बाहर जो स्विमिंग पूल है उसे जो एक कोने से दूसरे कोने तक पार करेगा उसे 1,00,000 का इनाम और मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप दी जाएगी। बहुत सिंपल शर्त थी। तो बहुत सारे युवक आए पर देखा कि उस स्विमिंग पूल में बहुत सारे सांप हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें कूदने की और बाहर निकलने की। इतने में एक लड़का एक कोने से कूदा, बहुत मुश्किल से सांपों से अपने आप को बचाते हुए वो दूसरे कोने पर बाहर आया। वहां ही बिजनेसमैन खड़े थे और उनको उन्होंने शाबाशी दी, कहा कि बेटा तुम सचमुच साहसी हो, मुझे जैसे पार्टनर की जरूरत थी वो गुण तुम में है, तो शर्त के मुताबिक तुम्हें 1,00,000 का इनाम और मेरे बिजनेस की पार्टनरशिप मिलेगी। तो उसने कहा ना तो मुझे 1,00,000 चाहिए और ना ही आपकी पार्टनरशिप चाहिए, मुझे पहले उसे ढूंढने दो जिसने मुझे इस पूल में धक्का दिया है। अब देखिए उस धक्के ने क्या करा लिया उससे, जो उसके लिए असंभव था। तो ऐसे कई बार थोड़ा प्रेशर हमारी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, और इसीलिए वो कंपनियां डेडलाइंस रखती हैं, नहीं तो हम केयरलेस भी हो सकते हैं अपने काम के प्रति। अब हम अपने तनाव को कम करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं? ज्यादातर मनोरंजन के साधन, एंटरटेनमेंट, पार्टीज में जाएंगे, क्लब्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, फिल्म देखेंगे, म्यूजिक सुनेंगे। कुछ लोग व्यसन लेते हैं, जैसे कहा शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, और ड्रग्स भी कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग जिम में भी जाते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका है। तो जब हम ये सब मनोरंजन के साधन अपनाते हैं तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, उतना समय तक हमें लगता है कि हमारा तनाव बिल्कुल समाप्त हो गया। लेकिन जब ये मनोरंजन समाप्त होता है फिर से वही समस्या हमारे सामने होती है, फिर तनाव शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमने तनाव को पोस्टपोन कर लिया। दिस इज नॉट द रियल रेमेडी फॉर स्ट्रेस। थोड़े समय के लिए तनाव को हम पोस्टपोन कर लेते हैं। तो वास्तव में तनाव हम कम कर पाए उसके लिए हमें तनाव के मूल कारण को समझना होगा। तनाव का मूल कारण हमारे सोचने के तरीके में है। किसी भी परिस्थिति में हम किस दिशा में सोच रहे हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं और वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। मानो तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां जिन्हें हम समस्याएं कहते हैं, जो हमने अभी चर्चा की, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, हाँ होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊं, क्या हानि हो जाएगी इसमें मेरा, क्या बुरा हो जाएगा, वही हम ज्यादा सोच रहे हैं तो फीलिंग्स क्या होंगी, पैनिक, फियर एंड वरी। और ये सोचना बहुत आसान होता है, नेगेटिव सोचना आसान होता है। मानो आपके घर में मेहमान आते हैं और आप सर्वेंट है, बेटी है, बहू, जिसको भी कहते हैं कि चाय बनाकर ले आओ, वो चाय बनाकर लाती है, किसी कारण से वो सारी चाय क्रॉकरी गिर जाती है, टूटती भी है मानो। अब हम दो तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अगर हम नेगेटिव हैं तुरंत गुस्सा करेंगे, देखकर काम नहीं कर सकते, या जो भी हमारे उस समय मन में आएगा हम कहेंगे, तो जो काम करेगा उसको भी थोड़ा भय होगा और जो मेहमान है वो भी असहज होंगे, यानी वातावरण में थोड़ा टेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, गिर जाता है, कभी हो जाता है ऐसा, आगे से ध्यान से काम करना, और ही हम उनको सब समेटने में मदद करते हैं। परिस्थिति पैदा हुई लेकिन मैंने उसको कैसे रिस्पॉन्स किया, उस अनुसार हम फील करेंगे कि तनाव हो रहा है या नहीं। आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी किसने लगा दी, दो तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, या तो हम गुस्सा होके तुरंत गाड़ी से बाहर निकलेंगे और जो जिसके जिसने लगा दी अगर वो पकड़ में आ गया तो छोड़ेंगे नहीं उसको, या फिर हम सोचेंगे हम बहुत ट्रैफिक में हैं, मुझे अब और ध्यान से ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है ताकि ना लगे, दूसरों से भी मुझे अपनी गाड़ी को बचाना है, ना कि दूसरे की गलती पकड़नी है। तो किसने टेंशन पैदा किया, हमारी सोचने, हमने उस परिस्थिति में कैसे सोचा, कैसे रिएक्ट किया। एक बार ऐसे ही एक पत्रकार थे, वो अपने जो बीता साल था उसके बारे में लिख रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि मेरा बीता साल बहुत बुरा था, मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे कई दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक साल बर्बाद हो गया और मैं रिटायर हो गया। उसकी पत्नी ने देखा, वो पीछे से आई, देखा कि वो क्या लिख रहे हैं, तो उसने उनके सामने ही वो पेज पलटा और लिखना शुरू किया कि बीता साल हमारे लिए, हम पर भगवान की बहुत कृपा रही, मेरे पति का ऑपरेशन हुआ, वो बहुत लंबे समय से दर्द में थे और ऑपरेशन होने के बाद हमेशा के लिए उन्हें दर्द से छुटकारा मिल गया। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसके टांग में फ्रैक्चर हुआ, उसका एक साल खराब हुआ, लेकिन भगवान की मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसे जीवन दान मिला। मेरे ससुर, वो 90 साल की आयु में बिना किसी लंबी बीमारी के सहज मृत्यु को प्राप्त हुए, और अब मेरे पति रिटायर हो चुके हैं, वो बहुत समय से कुछ किताबें लिखना चाहते थे, अब उन्हें समय मिलेगा और वो अपनी किताबें लिख सकेंगे। तो देखिए परिस्थिति वही है लेकिन दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग, तो एक को बुरा लग रहा है, एक को उसी में भागी महसूस हो रहा है। तो हम किसी भी परिस्थिति में किस दिशा में सोचते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मुझे टेंशन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। पर ये जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है, आपका पूरा सेशन हुआ होगा पॉजिटिव थिंकिंग पर, तो ये इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने मन को हमें कुछ अभ्यास देने की जरूरत है और वो अभ्यास है मेडिटेशन। हमने बताया आपको स्ट्रेस क्यों होता है, जब प्रेशर्स ज्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है, तो या तो हम प्रेशर्स कम कर दें, प्रेशर्स कम कर सकते हैं हम, हमारी लाइफ में जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं ही ना आए, ऐसा हो सकता है, हो सकता है कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, हो सकता है, या जो भी हम कहें, आज के समय में जैसे इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है, आने वाले समय में क्या वो कम हो जाएगा, नहीं होने वाला है, समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। तो समस्याओं को हम कम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उनके प्रति अपनी सामना करने की शक्ति, धैर्य, शांति वो हम बढ़ा सकते हैं। और वो भीतरी शक्तियां हैं जो हमें बाहर से नहीं मिलती हैं, और इसके लिए हमें कुछ भीतरी प्रयास करने होंगे, और मेडिटेशन वही एक प्रयास है, ध्यान करना, योग करना। तो आप यहां राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग में दो चरण हैं। पहला स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो जब हम अपने भीतर जाते हैं, हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप को देखते हैं, हमें समझ में आने लगता है मेरी समस्या कहाँ है, मेरी कमी कहाँ है, मुझे कहाँ परिवर्तन लाना है। हमारा आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है ना। नॉर्मली हम अंतर्मुखी नहीं होते, हम बाह्यमुखी होते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि हमारी उंगली हमेशा कहाँ है, दूसरों की ओर है, लेकिन योग में हम आत्मचिंतन करते हैं। और दूसरा, परमात्मा से हमारा संबंध होता है जो सर्वशक्तिवान है। और जब मन का संबंध ईश्वर के साथ होता है जो शांति के सागर है, मन को शांति मिलती है, हमारा आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ता है ईश्वरीय शक्तियों के कारण, तो फिर बड़ी बात भी हमें छोटी लगती है, परिस्थितियां खेल की तरह लगती हैं। और यही हम देखते हैं कि जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हुए संसार में, उनकी ये विशेषता थी, कितनी भी कठिनाइयां आई उनके जीवन में, बहुत सहज उन्होंने उनको पार किया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, गुरु नानक देव जी थे, चाहे वो क्राइस्ट थे, महात्मा गांधी रहे, महात्मा सुकरात, मदर टेरेसा, कितने ही नाम हैं जो आध्यात्मिक हस्तियां हुई हैं इस संसार में। तो मेडिटेशन के बारे में तो आप सीख रहे हैं, हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम योग अभ्यास करते हैं तब हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन तब भी होते हैं। जैसे जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं, वो हानिकारक होते हैं, वो रोग पैदा करते हैं, लेकिन जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में केमिकल्स बनते हैं जो लाभदायक होते हैं। इन्हें एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, सेरोटोनिन्स कहते हैं। ये हमारी हार्ट रेट कम करते हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, रेस्पिरेशन कम करते हैं, हमारे सारा सिस्टम एक बैलेंस में काम करने लगता है, और हम न सिर्फ मन से स्वस्थ होते हैं लेकिन तन से भी स्वस्थ होते हैं। और यही कारण है कि योग आज लोकप्रिय हो रहा है। आज पूरा विश्व योगा डे मनाने लगा है 21 जून को, क्योंकि योग हमें तन और मन दोनों से ही स्वस्थ बनाता है। और ऐसी बहुत साइंटिफिक स्टडीज हैं जिसमें यह सिद्ध हो चुका है कि प्रतिदिन जो योग अभ्यास करते हैं वो अपने मन को भी अधिक सकारात्मक और आशावादी रख पाते हैं, और इस कारण वो साइकोसोमैटिक बीमारियों से भी बचे रहते हैं। हमारी जो भी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है या वर्क प्लेस की लाइफ है, उसमें तीन बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स। हम सभी कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं, कार्य करते हैं, और जो भी कार्य हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे पर आता है। प्रभाव आता है मानो हम अफसर हैं तो सारे दिन हम ऑफिशियल बने रहते हैं, लोगों से काम कराना होता है, 8 घंटे हमने वो रोल प्ले किया, अब हम घर आए, घर में ऑफिसर हैं, लेकिन कई बार अपने रोल से हम डिटैच नहीं कर पाते। आपको घर में भी हम ऑफिशियल बने रहते हैं लेकिन घर वालों को आपका स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए। तो जैसे ही हम कहेंगे कि पत्नी के सामने आप पति हैं, माँ के सामने आप पुत्र हैं, बच्चों के सामने आप पिता हैं, तो जहां हमारा जैसा रोल है वैसा रोल हम फिर प्ले नहीं कर पाते, और यही कारण है फिर वो संबंधों में तनाव पैदा करने लगता है। मानो वर्कर हैं, ऑफिसर नहीं है, वर्कर हैं, काम करते हैं तो कभी कोई कुछ कहता भी है, हम पलट कर जवाब नहीं दे सकते, चुप रहना पड़ता है, तो गुस्सा पी लेते हैं। अब गुस्सा पीते हैं, हाँ, मन में फ्रस्ट्रेशन है, घर पहुंचे, घर में जो सामने आया बच्चा सामने आया, पत्नी सामने आया, बिना मतलब उन पर गुस्सा उतारते हैं, सोचते हमने ऐसा कुछ किया नहीं। तो ऑफिस का टेंशन हम कहाँ ला रहे हैं, घर में ला रहे हैं। कुछ लोग अपने घर के टेंशन ऑफिस में ले जाते हैं, ना हम वहां रिलैक्स रह पाते हैं ना यहाँ रिलैक्स रह पाते हैं। तो यहाँ आप स्पिरिचुअलिटी में सीख रहे हैं कि जो हम करते हैं वो हम नहीं है, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम आत्मा है जिसे ये कर्म मिला है संसार में करने के लिए, और जब ये समझ में आता है हमें तो अपने रोल से डिटैच होना हमारे लिए आसान हो जाता है, और जहां हमारा जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले कर पाते हैं। एक बार एक स्थान पर रामलीला चल रही थी और वहां हनुमान का रोल प्ले करने वाला नहीं आया था, तो मैनेजर ने देखा कि बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई है तो मुझे शुरू करवा देना चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो उसने अपने एक वर्कर को बुलाया, कहा कि देखो तुम हनुमान का ड्रेस पहन के स्टेज पर आ जाओ, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, रावण की दरबार लगी हुई होगी और वो तुमसे एक सवाल पूछेगा, तुम कौन, तो तुम जवाब देना, मैं श्री राम भक्त हनुमान, सिर्फ यही सीन तुम्हें करना है, उसके बाद फिर हम संभाल लेंगे। उसने कहा ठीक है। वो हनुमान का ड्रेस पहनकर स्टेज पर आ गया। अब उसने पहले कभी एक्टिंग की नहीं थी और रावण तो कितना जोर से बोलता है क्योंकि उसका रोल है ऐसा, तो जोर से चिल्ला के उसको पूछता है तुम कौन। वो बेचारा घबरा जाता है और बोलता है मैं छगन लाल रिक्शा वाला। तो जब हम टेंशन में होते हैं तो जैसा हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए वैसा हम नहीं कर पाते। ऐसे ही रूटीन्स, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए यदि हम तनाव मुक्त रहना चाहते हैं। दिनचर्या व्यवस्थित होने का अर्थ है समय से सोना, समय से उठना, समय से भोजन करना, कार्य करना, अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना। लेकिन आज की जीवन शैली क्या है, सारा दिन हम व्यस्त हैं, शाम को घर लौटे हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, बोलिए क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, क्योंकि घर में वही मनोरंजन का साधन है। अब मानो आप मैच देख रहे हैं या न्यूज देख रहे हैं, ज्यादातर न्यूज देखते हैं मानो, तो क्या हम रिलैक्स हो जाते हैं न्यूज देख के? इस दुनिया की सबसे बुरी खबरें मीडिया की सबसे अच्छी खबरें हैं, और वो खबर मैंने देखी और आजकल वो मीडिया उसे रिपीट करता रहता है, तो हमारा टेंशन बढ़ने वाला है या घटने वाला है? बहनें सीरियल देखती हैं मानो, तो सीरियल क्या आपको स्वस्थ मनोरंजन देते हैं? हमारी भावनाओं को और दूषित करते हैं। आप मैच देख रहे हैं, आपकी मनपसंद टीम जीत रही है तो खुश, और अगर हार रही है तो उनके साथ साथ हमारा भी अप एंड डाउन होता है, नहीं होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर कभी गुस्सा बढ़ता है, फिर हम वहीं से बैठे बैठे उनको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर हम मीडिया के सामने हैं, रात को देर से सोते हैं, फिर वो भी छोड़ो, आजकल सोशल मीडिया भी है, फेसबुक पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, देर रात सोते हैं, देर से सोएंगे तो देर से ही उठेंगे। कहा गया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेट टू बेड लेट टू राइज क्या होने वाला है, क्या होने वाला है हम समझ सकते हैं, हरी वरी एंड करी, क्योंकि हम देर से उठे हैं, हमारे पास अपने लिए अब समय नहीं है, आप व्यायाम नहीं कर सकते, आप ध्यान नहीं कर सकते, वो समय तो गया, लेकिन थोड़े समय में आपको इतना काम पूरा करना है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, आपको ऑफिस जाना है, जल्दबाजी में हम काम निपटाने की कोशिश करते हैं, दिन ही टेंशन में शुरू होता है और कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, एक भी काम सही ढंग से हम पूरा नहीं कर पाते हैं, ये स्थिति होती है। तो हमारी दिनचर्या जितनी व्यवस्थित होगी और जितना हम एक्यूरेट एक्टिव अलर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे उतना हम तनाव मुक्त रहेंगे। संबंध, हम सभी संबंधों में रहते हैं, तो संबंध दो तरह से कार्य करते हैं हमारे जीवन में। अगर हमारे संबंध मधुर हैं तो वो हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम अपने सुख दुख बांटते हैं और कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है। ये देखा गया अमेरिका विदेशों में लोग पेट्स रखते हैं तो वो पेट्स से बातें करते हैं, एक स्टडी की गई, तो देखा गया कि जो अपने पेट से बातें करते हैं उनको हार्ट की बीमारी नहीं होती है। तो जानने की कोशिश की गई कि अपने पेट से क्यों बातें करते हैं, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, उनसे बातें करें। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो पेट हैं ये चुपचाप सुनते हैं, इनका नहीं सुनना पड़ता हमें। अगर हम किसी मनुष्य से बात करेंगे ना तो उसका भी सुनना पड़ेगा, तो हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो देखिए, जानवर को भी सुना दिया, उसके आगे भी अपना मन खाली किया, तो उसके भी सकारात्मक परिणाम। तो यहां तो आप राजयोग सीख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो पेट्स रखने का ज्यादा रिवाज नहीं है। बहुत संपन्न परिवारों में कोई शौकिया पेट्स रखते होंगे। तो राजयोग में हम भगवान से बातें करना सीखते हैं, और भगवान बहुत साइलेंट और फेथफुल लिसनर है। वो चुपचाप सुनेंगे आपकी बात, किसी को सुनाने भी नहीं वाले हैं, और साथ साथ जो समस्या है हमें उसके लिए वो शक्ति भी हमें दे देते हैं। इसीलिए ईश्वर का संबंध हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी संबंधों में कुछ बातें आती हैं, कुछ नकारात्मक बातें आ जाती हैं तो तनाव पैदा करती हैं। जैसे एक्सपेक्टेशंस अगर हम बहुत रखते हैं, खासकर समीप संबंधों में हम बहुत अधिकार रखते हैं, मेरी पत्नी है इसे मेरे लिए सब कुछ करना ही चाहिए, करती है तो ठीक और नहीं करती है तो नाराज, गुस्सा, टेंशन, बच्चा है कहना मानना ही चाहिए मेरा, किसी दूसरे के बच्चे को मैंने कोई बात कही उसने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरापन है ना, उन पर हम अधिकार रखते हैं। पत्नी भी पति के लिए ऐसे ही सोचती है मानो। तो अगर हम बहुत अपेक्षाएं रखते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारी अपेक्षाएं हमेशा पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग है। कोई भी दो मनुष्य संसार में एक जैसे है ही नहीं, हर एक की सोच अलग है हमसे। तो जैसा हम सोचते हैं दूसरा ही वैसा भी सोचता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसीलिए हम हमेशा जैसा चाहते हैं वैसा ही वो करें, ऐसा संभव नहीं है, ये हमें समझना होगा। तो संबंधों में जब आपसी समझ होगी तो फिर हम वो अपेक्षाएं उनसे नहीं रखेंगे। अपेक्षाएं पूर्ण हुई तो भी संतुष्ट, और नहीं पूर्ण हुई तो भी हमने रखी ही नहीं तो हम संतुष्ट हैं। ऐसे ही जलसी हो जाती है कई बार संबंधों में। हम देखते हैं हमारे मित्र संबंधी हैं, उन्नति कर रहे हैं, समृद्ध हैं, हम वहीं के वहीं हैं तो चिंता चिता के समान है। तो ईर्ष्या भी एक अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है, ऐसा कहते हैं। ईर्ष्या से हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे को हम नुकसान नहीं पहुंचाते। संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं, दूसरे होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर सुखी होते हैं, और तीसरे होते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी होते हैं। ईर्ष्या हम किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? दूसरों को सुखी देख करके यदि हमें दुख होता है, दूसरों को खुश देख करके यदि हम परेशान होते हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व की कमी है। तो हमें अपने आप की चेकिंग करनी होगी कि कहीं मुझे ऐसा तो अनुभव नहीं होता है, और अगर होता है तो हम परिवर्तन लाएं। हम दूसरों के प्रति सदा शुभ भावना रखें, उनकी खुशी में हम खुश हों, और यदि हम उन्नति करना चाहते हैं तो फिर हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपने गुणों को बढ़ाएं, ताकि हम भी जीवन में उन्नति करने लगे। ऐसे ही मानो किसी ने हमें क्रिटिसाइज किया, गुस्सा आता है हमें आपसी संबंधों में कई बार, और गुस्से में हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। हमेशा हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं जब हम गुस्सा करते हैं। इसीलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता है। तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और गुस्सा हम कैसे कंट्रोल करें? तो एक तरीका, कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका हम अपना सकते हैं कि हम अपने गुस्से को थोड़ा पोस्टपोन करें। हम सोचें हम अपनी बात कहेंगे। किसी भी कारण से गुस्सा आता है, मानो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, या किसी ने मेरे को झूठ बोल दिया, या किसी ने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, यही कुछ कारण होते हैं जो गुस्सा आता है। कुछ भी हुआ, हम कहें कि हम ये अपनी बात कहेंगे लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद, एक दिन के बाद, अगर इतना धैर्य हम रख सकते हैं, एक दिन जितना धैर्य नहीं रख सकते तो एक घंटे बाद, अगर एक घंटा भी नहीं तो 10 मिनट बाद, हाँ कुछ मिनट के बाद हम अपनी बात कहेंगे। तो उसमें दो बातें होती हैं, हमारी बुद्धि बहुत चलती रहती है, जब कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो बुद्धि बहुत चलती है, तो हमें समझ में आ जाता है सारी गलती सामने वाले की नहीं है, कहीं मेरी भी गलती है, इसलिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो परमानेंटली पोस्टपोन हो जाते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं इनकी गलती है और इनको बताना ही चाहिए, नहीं बताएंगे तो दोबारा वही गलती होगी, तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है और वही बात अब हम शांति से कहेंगे, प्रेम से कहेंगे, थोड़ा रिस्पेक्ट से कहेंगे, तो सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा, मान लेगा तो समाधान होगा। लेकिन यदि हमने गुस्से से कहा, तुरंत रिएक्ट किया, बिना सोचे समझे हम रिएक्ट करते हैं, तो सामने वाला भी क्या करने वाला है, गुस्सा ही करने वाला है, क्योंकि गुस्सा गुस्से को जन्म देता है और हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। एक बार ऐसे ही एक ऑफिसर को अपने स्टाफ की मीटिंग लेनी थी, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि तुम मेरे टेबल पर एक जग पानी और गिलास रख देना। उसने रख दिया। मीटिंग के बीच बीच में काफी ऐसी बातें निकल रही थी जो गुस्सा दिलाने वाली थी, तो वो जैसे ही गुस्सा आता था उनको एक ग्लास पानी भरते थे और पी लेते थे, उसके बाद फिर बात करते थे, तो मीटिंग का परिणाम निकला, मीटिंग सफल रही। तो असिस्टेंट ने उनको पूछा बाहर निकलने पर कि साहब आप बहुत पानी पी रहे थे आज, क्या आप नेचुरोपैथी करते हैं या आप वाटर थेरेपी करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैंने एंगर थेरेपी किया, जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं एक ग्लास पानी पी लेता था। लेकिन वो जो थोड़ा सा समय उन्होंने पोस्टपोन किया अपने गुस्से को, कितना अच्छा परिणाम रहा। कई बार लोग कहते हैं आप 100 तक गिनती बोलो तो आपका गुस्सा थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा, या उल्टी गिनती आप बोलो, कई तरीके बताते हैं बोलिए ऐसे उसको पोस्टपोन करें। हम कहेंगे आप ओम शांति बोलिए, मन में आप 10 बार 20 बार ओम की तरह हैं कि मन शांति शक्ति है, क्योंकि एक मंत्र की तरह है कि मन शांत होने लगेगा और फिर हम अपनी बात शांति से कहेंगे। तो अपने गुस्से को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि गुस्सा भी तनाव का एक रूप है जो संबंधों में आता है। और 3 A's का फार्मूला अगर हम अपनाएंगे तो भी हम काफी हद तक तनाव मुक्त रह सकते हैं, एक्सेप्ट ऑल्टर एंड अवॉइड। कई बातों को जीवन में हमें स्वीकार करना पड़ता है, जैसे हमने कहा सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और जो चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमें टेंशन नहीं होता। होने को अगर हमने स्वीकार कर लिया, या मानो हमारे परिवार के कोई सदस्य हैं या हमारे कार्यस्थल के कोई साथी हैं, उनका स्वभाव हमसे बिल्कुल मिलता ही नहीं है, हमने बहुत बार समझा लिया उनको, कुछ अंतर नहीं आता है क्योंकि वो भी अपने स्वभाव से मजबूर हैं। अब हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं लेकिन अब हम उन्हें स्वीकार कर लें, वो जो हैं जैसे, क्योंकि हमें उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही काम करना है, तो फिर उनको स्वीकार कर लेंगे और समझ कर चलेंगे तो उनके साथ रहने में हमको टेंशन नहीं होगा, नहीं तो रोज कोई ना कोई बात को लेकर टेंशन होता रहेगा। कोई अनहोनी हो जाती है जीवन में, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, मानो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, तो उसे हमने स्वीकार कर लिया कि ठीक है जो होना था वो हो गया, ये कोई कर्मों की गति के अनुसार, कर्मों की गति पर भी आप समझेंगे आपका सेशन होगा या हो चुका होगा, तो ऐसे कुछ परिणाम हमारे सामने आते हैं। लेकिन अब हमें भविष्य के लिए कैसे सावधान रहना है वो हम ध्यान रखें। कुछ बातों में हम परिवर्तन ला सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, ऑल्टर करना माना परिवर्तन लाना, और वो है मेरा अपना स्वभाव, मेरा अपना व्यक्तित्व। मानो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी गुस्सा आता है, मुझे जल्दी ईर्ष्या हो जाती है, या मुझे ईगो आता है, मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, जल्दी फीलिंग आ जाती है, फीलिंग आ जाती है तो कई दिनों तक मेरा मूड ऑफ रहता है, होता है किसी किसी का स्वभाव, तो मैं अपने स्वभाव को बदल सकती हूँ, भले उसके लिए मुझे कुछ समय देना पड़ेगा, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं, योग अभ्यास करते हैं, उससे हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है और हमारी काफी समस्याएं उससे कम होती हैं जीवन की। ऐसे ही कुछ बातों को हमें अवॉइड करना पड़ता है। ये इतनी बड़ी दुनिया है और आज मीडिया ने इसे ग्लोबल विलेज बना दिया है। दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, मेरे ड्राइंग रूम में कितनी देर में आ जाता है, कितनी देर में आ जाता है, एक मिनट भी नहीं लगता है। और हम ऐसे ऐसे समाचार देखते सुनते हैं। हाँ, अभी कुछ चल रहा था, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने मिसाइल दाग दी सीरिया पर, ऐसा कुछ समाचार था। अब मैंने सुना तो क्या होने वाला है। तो जब हम ऐसे समाचार सुनते हैं और उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, तो पहले तो हम कोशिश करें कि हम ना ही सुने, पर अगर हम सुनते भी हैं तो साक्षी होकर के सुने। साक्षी होकर के सुनना माना सुनते हुए भी जैसे हमने उसे नहीं सुना, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, दूसरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, कई बातें हैं। दूसरों की अशांति से हम अशांत होते हैं, दूसरों के दुखों का असर मेरे ऊपर आ रहा है। तो कुछ बातें जीवन में हमें अवॉइड करना होता है। तो अगर हम ये 3 A's का फॉर्मूला अपनाते हैं और परिस्थितियों में मन को सकारात्मक रख पाते हैं, उसके लिए फिर हमें जरूर अपने आप को थोड़ा समय देना होता है, अपने मन को वो अभ्यास देना होता है, तो हम काफी हद तक तनाव मुक्त, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। तो 2 पंक्तियों के साथ मैं इसे समाप्त करूंगी। सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलिए तो किनारे मिल जाएंगे। ओम शांति।